ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। अभी आपको ये दिखाई पड़ रहा है?
Yes, Prabhu, we can see.
Very good. तो ये हमारा आखिरी स्पॉट था जहाँ पर हम लोग बातचीत करके आगे बढ़े थे, और ये हम लोग अभी सनातन गोस्वामी की कुटी से बाहर निकलकर मेन रोड पे आते हैं, तो वहाँ से हम लोग सखी स्थली में आते हैं। ये सखी स्थली जो है ये मेन रोड पे देखिए एक सुंदर वृक्ष है, इसको आप गले लगाकर अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए। अपने मन की कामना इस पर्वत के सामने प्रकट, इस पेड़ के सामने प्रकट करके आप आगे बढ़ते हैं। अभी आपके अंदर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दिखाई पड़ रहा है ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना?
हाँ प्रभु जी,
दिखाई पड़ रहा है रिकॉर्डिंग ना?
हाँ,
वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मेन रोड से जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस रोड से आगे जाएंगे तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये कुंड आता है, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है चल के सखी स्थली। तो सखी स्थली नाम कुंड का महत्व क्या है कि सखी स्थली कुंड जो है वो ये सखी यानी चंद्रावली का गांव है। चंद्रावली सखी राधा रानी का ही अवतार है वैसे, और चंद्रावली सखी का जन्म विंध्याचल के पास हुआ था और उनको फिर पुतना उठा कर ले गई थी, फिर वो विदर्भ राज्य में जहाँ रुक्मिणी का जन्म आगे जाकर हुआ वहाँ पर 5 साल तक चंद्रावली का लालन पालन भीष्मक राजा के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद पूर्णमासी वहाँ पर गई और पूर्णमासी ने चंद्रावली को लाकर चंद्रभानु जी को दिया, तो वो चंद्रभानु जी की कन्या के रूप में फिर प्रचलित हुई चंद्रावली। और ये राधा रानी और इनका दो दो साइड है, राइट विंग लेफ्ट विंग, तो राइट विंग गोपी जो है वो चंद्रावली है और लेफ्ट विंग गोपी राधा रानी है। तो चंद्रावली ये राधा रानी और कृष्ण के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए ही इनका अस्तित्व है, और चंद्रावली जी का विवाह जो है इस गांव में सखी स्थली इस गांव में गोवर्धन मल्ल के साथ में हुआ था। तो ये गांव उनका गांव है, यहाँ पर विवाह होने के बाद में चंद्रावली गोवर्धन मल्ल के साथ में रहा करती थी और इस कुंड में रोज स्नान करती थी। तो सखी स्थली को हम प्रणाम करेंगे और चंद्रावली को प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर और एक सुंदर वृक्ष आता है अगेन रास्ते में, बहुत ही अद्भुत, देखिए इसकी शाखाएं कैसी जमीन पे जा रही है, बहुत ही अद्भुत। तो इसको भी आप प्रणाम कीजिए, ये पीलू का वृक्ष है। जैसा मैंने पहले भी कहा था पीलू का वृक्ष राधा रानी को बड़ा प्रिय है, राधा रानी को और भी बहुत सारी प्रिय चीज़ें हैं। राधा रानी को नीला रंग बहुत बड़ा प्रिय है, नीला और गुलाबी रंग, नीला नीला रंग का घाघरा पहनती है, गुलाबी रंग का ब्लाउज पहनती है, और भोजन में उनको अरबी की सब्जी बहुत पसंद है और अनार और चीकू ये बहुत उनको पसंद है। पेड़ में उनको पीलू का पेड़ बहुत पसंद है, संगीत में राग पीलू बहुत पसंद है, और वाद्य में उनको वीणा बहुत अच्छी लगती है, वीणा बजाती है राधा रानी, और उनके 25 गुण हैं। एनीवेज वो कल बरसाने में बात करेंगे। तो ये पीलू का वृक्ष है, इसमें वसंत ऋतु में बहुत सुंदर फल आते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी कृष्ण भगवान सब उसको खाया करते थे। सबको साइलेंट कर दीजिए प्रभु जी एक बार। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, यहाँ से देखो आपको लंबा रास्ता दिखता है, यहाँ से बहुत दूर तक जाता है, इसके बीच में कोई बड़ा स्थान नहीं है, लेकिन बड़े आगे जाएंगे तो राधा कुंड के थोड़े से पहले ये स्थान आएगा। ये स्थान का नाम है उद्धव कुंड। अभी उद्धव कुंड जो है, जैसे हमने कल नंदगांव में आपसे बातचीत किया था, गोपी जी गोपियाँ सब उद्धव जी से मिली थी और उनको एकांत में उद्धव क्यारी में ले गई थी और वहाँ पर बहुत लंबा संवाद हुआ था। उसके बाद में 6 महीने उद्धव जी गोपियों के साथ में ब्रज में घूमते रहे, गोपियों की कहानी सुनते रहे, गोपियों को उस तरह सांत्वना देते रहे। और 6 महीने के बाद राधा रानी ने उनको बताया, अरे उद्धव जी भाई बहुत देर हो गई, तुम्हारे सखा तुम्हारी याद करते होंगे, उनको जाना चाहिए वापस। तो गोपियों की फिर विदा लेकर उद्धव जी द्वारका गए। उन्होंने कृष्ण को संदेश दिया, रिपोर्ट दिया पूरा क्या क्या हुआ, और कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कृष्ण ने उद्धव जी ने कहा कि मैं दोबारा वृंदावन जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी तृण का पत्ता बनना है और तपस्या करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है समझ लीजिए, जैसे कि इतने बड़े ज्ञानी थे वो उद्धव जी, बृहस्पति के शिष्य थे, कृष्ण के मित्र थे, सब कुछ थे, लेकिन जो बात गोपियों के मन में थी वो उद्धव जी को पता नहीं था। तो जब वो उनका संग किया, उन्होंने उनको वृंदावन की महिषिया कहते हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं कृष्ण की वो। तो जब वो वृंदावन में इस तरह से उन्होंने देखा तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि इनके चरणों की धूल मिलनी चाहिए, बस इनके चरणों की धूल मिलेगी तो फिर हम जीवन में कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, कुछ कृपा मिलेगी इनके चरणों की। लेकिन मैं भी सेनापति हूँ द्वारका का, कृष्ण के जैसा मेरा शरीर भी है, और मंत्री हूँ कृष्ण का, सखा हूँ, चचेरा भाई भी हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, इतना बड़ा मेरा पोजीशन है, तो ये सहजता से मुझे अपने चरणों की धूल नहीं देंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने 6 महीने उनके साथ घूमते हुए देखा था कि जब वो घास के पत्ते पर चलती थी तो उन्हें कोई संकोच नहीं होता था घास पर चलने के लिए। तो मैं अगर घास का पत्ता बन जाऊंगा तो अपने आप ही सहजता से मेरे ऊपर चलेंगी, तो इनके चरणों की रज जो मेरे सर पे आएगी तो सारे प्रेम का रहस्य मेरे आत्मा में खुल जाएगा, सारा रहस्य भेद हो जाएगा। तो ऐसे नम्र विचार करके उद्धव जी वापस आए और ब्रज में, यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये सरोवर है इसके पीछे देखिए एक सुंदर मंदिर दिखाई पड़ता है, वो गोवर्धन बीच में है और गोवर्धन के इस तरफ ये उद्धव कुंड है, उस तरफ ये कुसुम सरोवर है। तो ये कुसुम सरोवर के बिल्कुल उल्टी तरफ ये उद्धव कुंड है। यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या की और तपस्या बहुत कठोर तपस्या की, और यहाँ पर तपस्या करके उद्धव जी को घास के पत्ते का जन्म प्राप्त हुआ, जिसको गुलमलता कहते हैं। गुलमलता यानी वो एक घास का एक जाति है, वो आज भी गुलमलता उद्धव कुंड और कुसुम सरोवर के किनारे में मिलती है, और आज भी उद्धव कुंड और कुसुम सरोवर के किनारे पे उद्धव जी महाराज गुलमलता के रूप में निवास करते हैं, गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करते रहते हैं। तो ये बहुत ही उत्कट जगह है, पूरे वृंदावन धाम में, गोवर्धन में, जैसे वो उद्धव क्यारी है जहाँ पर अति उत्कट भाव प्रकट हुए थे, राधा रानी और गोपियों के हृदय के अच्छे अच्छे श्रेष्ठ भाव वहाँ प्रकट हुए थे। ऑल दी एक्स्टैटिक इमोशंस ऑफ गोपीज वर रिवील्ड एट उद्धव क्यारी। और उसका जो कंक्लूजन है, वो जो भाव दिखने के बाद में जो कंक्लूजन है, उसका सारांश है, वो यहाँ पर प्रकट हुआ है। वो सारांश क्या था कि गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त होनी चाहिए। जब गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त होगी तो ब्रज भक्ति ब्रज प्रेम का सारा रहस्य जो है वो खुल जाएगा। ओनली वेन वी अचीव द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ गोपीज देन ऑल द सीक्रेट्स ऑफ एक्सटैटिक डिवोशन एंड लव फॉर कृष्णा विल बी रिवील्ड। तो ये स्थान में आप हम सब लोग भी स्नान करेंगे, आचमन कीजिए, आप लोग सब लोग स्नान कीजिए, आचमन कीजिए, क्योंकि ये जल जो है वो बड़े नम्रता को देने वाला है। कारण क्या, उसका सर्वोच्च पद पर थे उद्धव जी महाराज, कृष्ण के भक्ति में और कोई उच्च पद नहीं था। इतने कृष्ण के निकट रहना, खाना पीना रहना, शिकार करना, सोना, उनके साथ हास्य विनोद करना, राज दरबार में मंत्रणा करना, शिकार खेलने जाना, भाईचारा, मंत्री ऑफिशियली अनऑफिशियली हर प्रकार से उद्धव जी सर्वोच्च पोजिशन में थे। लेकिन फिर भी उनको पता चला कि ये जो कृष्ण के पास वाली जो पोजीशन है, इससे भी ऊपर एक पोजीशन है, जो कृष्ण से दूर रहकर भी उनको ये अनुभव हुआ कि मैं इतना पास हूँ लेकिन गोपियाँ इतनी दूर हैं, फिर भी आत्मा से कृष्ण से कितनी निकट हैं। तो एक तरह से वो ब्रजवासी कहते हैं ना कि ज्ञान की पाठशाला से उनको प्रेम की पाठशाला में भेज दिया, ज्ञान की पाठशाला से प्रेम के विद्यालय में भेज दिया आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो सर्वोच्च जो भक्ति में सर्वोच्च पढ़ाई होती है ना, प्रेम विद्या, वो प्रेम विद्या उन्होंने ग्रहण की और वो प्रेम विद्या ग्रहण करने के लिए वो यहाँ पर आए। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात समझने जैसी है कि अगर सर्वोच्च प्रेम हमको प्राप्त करना है तो नम्रता बहुत आवश्यक है। कोई पद का गौरव, कोई पद का अभिमान, कोई ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकुल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो जिनको भी अपने पद का घमंड है, जिनको अपने पैसे का घमंड है, जिनके अपने अपने रूप का घमंड है, जिनको अपने अधिकार का घमंड है, किसी भी बात का घमंड है, तो वो व्यक्ति को भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। हमारी कुंती देवी भी बताती है भागवन में, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर हे धमो मदमा पुमान, कि जिनको अपने जन्म पर गर्व है, जिनको अपने धन पे गर्व है, अपने ऐश्वर्य पे गर्व है, जिन्हें अपने सौंदर्य पे गर्व है, विद्या पर गर्व है, वो कभी भी आपकी भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे प्राप्त हो सकते हो? त्वाम अकिंचन गोचरम, जो सबसे दीन है, जो अपने व्यवहार में दीन है, किसी बात का गर्व नहीं करते हैं, उन्हीं को ये भक्ति प्राप्त होती है। तो बाइबल में भी लिखा है द मीक एंड द हम्बल शल इनहेरिट द किंगडम ऑफ लॉर्ड। ये भगवान का धाम का जो धन दौलत है, ऐश्वर्य संपन्नता है, जो सही ऐश्वर्य है, वो केवल नम्र लोगों को प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा प्रयास जो है कि हम साधना करते हैं, जप करते हैं, उन सबका उद्देश्य एक ही है कि हम भगवान के भक्त बने और उसके पहले नम्र बने। तो नम्र बनने से ये भगवान के भक्ति की पाठशाला में प्रवेश मिलता है। जैसे ही गर्व होता है तो पाठशाला से बाहर जाते हैं हम लोग निकल के, वी विल बी थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल ऑफ डिवोशन भक्ति। जब तक नम्रता है तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, जब इतने नम्र बनेंगे हम, जैसे वास्तव में ये उद्धव जी महाराज तृण बने, और महाप्रभु चैतन्य बताते हैं तृण से भी अधिक नम्र बनना चाहिए, तो कितना उच्च पद उद्धव जी ने प्राप्त किया। इसलिए उद्धव जी को हमारा बार बार प्रणाम है। उद्धव जी नंदगांव के इतिहास में एक बहुत बड़े किरदार हैं, और उद्धव जी के प्रसंग में 8 घंटे के कम से कम 8 दिन तक ड्रामा चलता है। जब भी ड्रामा की मंडली आती है नंदगांव में, तो उद्धव जी के एक विषय पर रोज 8 घंटे 8 दिन तक ये कथा चलती रहती है। और उद्धव जी की कथा में केवल एक ही होता है, सब नंदगांव वासी रोते हैं और रोते रहते हैं। बस दो प्रसंग है नंदगांव के लोगों के जीवन में, एक अक्रूर जी का आना और कृष्ण बलराम को लेके जाना, और एक उद्धव जी का आना कृष्ण का संदेश लेकर। ये दो चीज़ें नंदगांव वासियों के लिए बहुत ही हृदय द्रावक है, हार्ट रेंडिंग, हार्ट ब्रेकिंग इवेंट्स इन दी लाइव्स ऑफ नंदगांव वासीज इज अक्रूरा कमिंग एंड टेकिंग कृष्ण बलराम एंड उद्धव जी कमिंग विद द मैसेज ऑफ कृष्णा। तो इसलिए बेस्ट, अगर हमको ब्रज को समझना है, अगर हमको ब्रज के बारे में जानना है, तो हमको ये जो व्यक्तिमत्व हैं, ये किरदार हैं, पर्सनालिटीज, जैसे उद्धव हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, यशोदा है, नंद महाराज है, रोहिणी है, हाँ श्रीदामा है, ललिता विशाखा राधा रानी, इन सभी लोगों का जो व्यक्तित्व है, उनके गुण जो है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनके व्यक्तित्व को समझे बिना हम ब्रज को नहीं समझ सकते, क्योंकि तो ब्रज का जितना भी रहस्य है, भाव का रहस्य, वो सब इनके हृदय में छुपा हुआ है। तो इसलिए अगर हमको ब्रज को स्टडी करना है तो इनके हृदय को स्टडी करना पड़ेगा, इनके लीलाओं को समझना पड़ेगा, तो आगे जाकर हमको ब्रज का रहस्य, ब्रज की धूल का रहस्य समझ में आएगा। तो आइए सब लोग उद्धव जी महाराज को प्रणाम करें, यहाँ पर आचमन करें और आगे निकलें। ये भी उद्धव जी कुंड का दर्शन है, वो दूसरे एंगल से है, और ये उद्धव बिहारी जी यानी राधा कृष्ण का मंदिर है यहाँ पर। उद्धव कुंड के किनारे पे हैं, तो इनको वंदन कीजिए और आगे बढ़ेंगे अभी। उसके आगे ना अभी ध्यान रखना, अभी हमको एकदम सावधान होना है। आप कितने भी थके होंगे उसकी परवाह नहीं करना है, आपको अभी सावधान होना है, क्योंकि हम राधा कुंड के घेरा में प्रवेश करने जा रहे हैं। राधा कुंड इलाका, द राधा कुंड एरिया टेरिटरी इज बिगिनिंग नाउ। तो यहाँ पर केवल एकांत और केवल मुख से हरिनाम का जप और कोई भी बातें नहीं, कोई टेलीफोन लेना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, केवल शांत रहकर भगवान का नाम लेते हुए, कथा सुनते हुए आगे बढ़ना है। ये पूरा इलाका यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो कुसुम सरोवर तक जितना भी एरिया है उस सबको राधा कुंड का घेरा घेरा कहते हैं, जहाँ पर राधा कृष्ण के अति अति उत्कट लीलाओं का संपन्नता होती है वहाँ पर। तो उसमें पहला स्थान आएगा ये शिवखोर, ये शिवखोर यानी जलाशय है, यहाँ पर शिवजी महाराज तपस्या करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर एक बार एक लोमड़ी यानी कि मराठी में ना कोल्ली कोल्ली कोल्ल्याची बायको, सो वो इसको ब्रजवासी बालकों ने बहुत तंग किया था और आग जलाकर उसको बिल में डाल दिया था, और बिल में वो अंदर तड़प रही थी, बाहर से आग जल रही थी, तो बहुत जोर से चिल्लाती है वो। तो राधा रानी उस समय राधा कुंड में थी, तो राधा कुंड में उसको ये चीख सुनाई पड़ी, शी हर्ड द क्राइज ऑफ दिस शी जैकल। और फिर राधा रानी ने कहा ललिता को, जाओ देखो कोई रो रहा है, मुझे सहन नहीं हो रहा है। राधा रानी को ना किसी का रोना सहन नहीं होता है, वो तुरंत कृपा कर देती है। तो ललिता जी राधा रानी के प्रतिनिधि के रूप में आई, सखियों को लेकर सभी बच्चों को भगा दिया और आग वाग निकाल के वो लोमड़ी को मुक्त कर दिया उसने, और लोमड़ी को अपने हाथ में उठाकर वो सीधे राधा कुंड लेकर आई। तो राधा रानी ने पूछा क्या हुआ, तो ललिता देवी ने सब कहानी बताई क्या हुआ। तो तुरंत राधा रानी ने उस लोमड़ी को अपने सर्कल में ले लिया, अपने पार्षद वृंद में ले लिया, यानी कि सीधे वो सखी बन गई राधा रानी की। आप विचार कर सकते हैं इतनी नीच योनि का जन्म होने के पश्चात भी राधा रानी की कृपा ऐसी होती है कि वो तुरंत सर्वोच्च पद पर पहुंचा देती है। राधा रानी के अंतरंग पार्षदों में उसका प्रवेश हुआ, तो ये स्थान है यहाँ पर राधा रानी की असीम कृपा हुई थी। ऐसी ही कृपा राधा कुंड पे होती रहती है। हमको सबको शांत रहने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि राधा रानी कब कृपा करेगी इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तैयार रहना चाहिए, अपनी चेतना को मन को भावना को एकाग्र रखते हुए आगे चलना है। तो आगे हम जब चलेंगे तो और आगे जाएंगे तो एक लेफ्ट टर्न आएगा, थोड़ा सा परिक्रमा रास्ता छोड़कर हम लोग लेफ्ट में मुड़ेंगे, केवल आधा किलोमीटर मुड़ेंगे, इसी रास्ते से आगे जाएंगे। तो देखिए आगे जाते हमको एक बहुत सुंदर स्थान मिलेगा, इसका नाम है माल्याहारी कुंड। ये माल्याहारी कुंड ना एकदम विशेष चटपटी लीलाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर की कहानी ऐसी है कि राधा रानी और गोपियाँ, उन्होंने अपने घर से मोती लाए थे और वो अच्छी अच्छी माला पहन कर बहुत ही ऐड रहे थे। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे भी कुछ मणि दे दीजिए। तो ललिता ने ना बहुत फटकारा कृष्ण को कि तुम्हारी क्या योग्यता है, हमारे मणि इतने मूल्यवान हैं, तुम तो सब गाय चराने वाले या गंवार व्यक्ति हो, तुमको क्या पता है। कृष्ण ने बहुत वहाँ पर विनती किया कि मुझे थोड़े मोती दे दो, फिर मैं भी थोड़ा पहनूंगा उसको, लेकिन ललिता देवी बार बार इनकार करती रही। तो फिर कृष्ण ने अपने घर पे जाकर अपने मैया से कुछ मोती ले लिए और यहाँ पर आकर उन मोतियों को बोया, उसको दूध दिया, दही दिया, मक्खन दिया, ब्रज रज दिया, अपने सखाओं को वहाँ पर गार्ड के रूप में रखा और बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर खेती की उन्होंने, बहुत सुंदर मूल्यवान मोतियों की खेती की। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो जो मोती इतने इतने हजारों हजारों संख्या में बनाए, उसकी मालाएं बनाई, खुद पहनी, ग्वाल बालों को पहनाई, गाय को पहनाई, मोर को पहनाई, कोयल को पहनाई, तोता को पहनाई, बंदर को भी पहनाई। तो वो देखकर सखियां आई, बोली अरे हमारे से भी कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे क्वालिटी के मोती बनाए। तो राधा रानी सखियों के साथ यहाँ पर आई और उन्होंने ना कृष्ण से ये मोती मांगे, तो ललिता जी को कृष्ण ने बहुत फटकारा और वहां से निकाल दिया, बोले हम आपको हम पेड़ों को पहनाएंगे, बंदरों को पहनाएंगे, आपको नहीं देंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक अच्छा किताब लिखा है मुक्त चरित, इस मुक्त चरित में पूरा लीला का वर्णन किया है यहाँ की माल्या हरि लीला की। तो बहुत देर के बाद में फिर गोपियाँ बहुत ही गिड़गिड़ाती हैं और देखती है कि कृष्ण ने बड़ी खेती अच्छी की है, सब जानकारी कर लेती है कि इन्होंने यहाँ पर तो दूध डाला, दही डाला, मक्खन डाला, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे मोती बने। तो उन्होंने भी अपने माइया बाबा से कुछ मतलब उधार के उधार से लिए कि हम आपको लौटा देंगे, ऐसे करके दिए और वो जमीन पे बोए और कहा है कि उसके दूध दही डालने के बाद में कांटे निकले, वहाँ से मोती नहीं निकले, सब मोती वेस्ट हो गए। तो वो बहुत दुखी हो गए कि माइया मैया बाबा क्या कहेंगे। तो कृष्ण से वापस आए, हमको कुछ कुछ देना, कुछ समय के लिए वापस करेंगे मैया बाबा को, तो मैया बाबा बहुत डांटेंगे हमको। तो कृष्ण ने उनको आखिर तक नहीं दिया। उसके बाद में फिर सब गोपियाँ और राधा रानी कृष्ण को शरण आई और फिर कृष्ण ने क्या किया, बड़े बड़े बक्से बनाए राधा रानी के नाम का, ललिता के नाम का, विशाखा के नाम का, ऐसे हर एक सखी के नाम के बड़े बड़े बक्से बनाए और फिर राधा कुंड में सबको गिफ्ट भेज दिए। तो ऐसे सुंदर लीला है, इसमें से कृष्ण यही बताते हैं कि किसी भी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, जो भी होता है भगवान की कृपा से होता है, और कुछ प्राप्त होने पर गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरा है मैं नहीं दूंगा, सब प्रॉपर्टी भगवान की होती है और भगवान के लिए ही उनकी सेवा का उपयोग करना चाहिए। तो जब गोपियाँ पहले घमंड में थी तो भगवान ने उनको मोती नहीं दिए, जब गोपियाँ नम्र हो गई तो भगवान ने उनको मोती दे दिए। तो ये माल्या हरि कुंड है, यहाँ पर माला मतलब मोतियों की माला बनाकर भगवान ने राधा रानी सब सखियों को गिफ्ट में दे दी। इसके आगे हम बढ़ेंगे, वापस हम लोग ये गली से बाहर आएंगे कुंड देखकर और फिर आगे बढ़ेंगे तो राइट टर्न आएगा। ये राइट टर्न में हम राधा कुंड एक्चुअल प्रवेश करेंगे। अभी ये गली जो है सीधे राधा कुंड पहुंचती है। तो ये गली के शुरुआत में ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये मंदिर बनाया, इसका नाम है कुंज बिहारी जी मंदिर, राधा कुंज बिहारी। और आप देख रहे हैं जो आदमी लोग बाहर आ रहे हैं ना, वो अंदर जाने का रास्ता है, वो उधर मंडप बना हुआ है, वहाँ से वो अंदर जाते हैं, कुंज बिहारी का दर्शन करते हैं और वहाँ से बाहर आकर राधा कुंड की ओर प्रवेश करते हैं। तो हम लोग ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रणाम करते हैं, राधा कुंज बिहारी जी को प्रणाम करते हैं और अभी बहुत ही मौन रखते हुए राधा कुंड की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अभी आप राधा कुंड में आ चुके हैं, ये बहुत ही सुंदर स्थिति है। राधा कुंड श्याम कुंड दोनों बाढ़ आ गई है और दोनों के पानी एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये देखेंगे तो अलग अलग है, देखिए ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो दोनों मिल चुके हैं। तो ये जो ब्रिज है ना, इसके नीचे भी छेद है और दोनों पानी एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन आगे जाएंगे तो आपको देखेगा कि ये ऊपर से भी मिल रहे हैं, ऐसा है। तो इसकी कहानी ऐसी है, ये विश्व का सर्वोच्च तीर्थ स्थान है। शाम के समय एक बार कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे थे, गोपियों को बुला रहे थे रास लीला करने के लिए, उतने में उनको भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी, बहुत भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। तो वो देखने लगे क्या हुआ, तो पता चला कि एक बैल राक्षस आ रहा है और वो बैल इतने जोर से गर्जना कर रहा है कि उसके गर्जना से कान बंद फट रहे लोगों के, लगता है प्रलय हो रहा है, नाक से इतनी जोर से हवा बह रही है कि तूफान आ रहा है और पूंछ आकाश में घूम रही है तो बादलों को यहाँ से वहाँ कर रही है। और जब दौड़ के आ रहा है तो हर एक पैर जब जमीन पे पड़ रहा है तो जमीन के अंदर में गड्ढा बना के अंदर का जो जल है वो फव्वारे की तरह उड़ रहा है, साथ साथ में इतना पेशाब और इतना टट्टी कर रहा है कि टट्टियों के पहाड़ बने और पेशाब के नदियाँ बनी वहाँ पर, ऐसा भयंकर आतंक करके वो आ रहा था। कई गोपियों का जो गर्भवती थी उनका एबॉर्शन हो गया, वो पेड़ों को लिपट लिपट कर चिल्लाने लगी, कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। तो फिर कृष्ण ने मुरली को अपने कमर में खोच दिया और उसके साथ युद्ध किया, दो घड़ी तक मतलब 48 मिनट तक युद्ध किया, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे को कई बार उठाकर फेंका आकाश में, जमीन में, इधर उधर, गोवर्धन पर्वत को उठाया और फेंका, भगवान ने भी कैच किया वापस फेंका, इस तरह से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने कई बार उसको पूंछ पकड़कर उसको हवा में घुमाया, जमीन में पटका, फिर कृष्ण भगवान ने दो पांव रखे, उसको दो सिंह उखाड़ दिए, दो सिंह उखाड़ के उसके पेट में घुसाए, और फिर आखिरी बार उसको उठाकर भगवान ने गोल गोल घुमाकर फेंका, तभी वो साथ साथ ही टट्टी और पेशाब करते करते वो जमीन पर गिर गया और मर गया। तो ये जब मरा ना, तो उसके अंदर से जो आत्मा निकली वो सुंदर, उसको वैकुंठ का शरीर प्राप्त हो गया, और वहाँ से विमान आया और उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा उद्धार किया। तो भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो वो जवाब देता है कि मैं बृहस्पति का शिष्य था, वरतंतु, और एक बार मैं अपने गुरुजी के क्लास में पैर फैलाकर बैठा था। तो गुरुजी ने कहा ठीक भाई, ठीक से बैठो, विद्यार्थी को ठीक से बैठना चाहिए आदर के साथ। तो फिर भी मैं पैर फैला के बैठा रहा। तो गुरुजी ने कहा बृहस्पति ने, अरे बैल की तरह पैर फैला के बैठते हो, जा बैल बन जाओ। तो मैं अरिष्टासुर बन गया और मेरा निवास बांग्लादेश में रहा, वहाँ पर बहुत राक्षसों का संग हो गया, तो मैं राक्षस बन गया। आपकी कृपा से मेरी मृत्यु हुई, तो मैं भी आपकी कृपा से वैकुंठ जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से अरिष्टासुर का वध होने के बाद अरिष्टासुर सीधे गोलोक धाम चला गया। फिर भगवान वापस आए, गोपियों को मिले और बताया कि देखो राक्षस था, मैंने वध कर दिया। तो गोपियाँ कहती नहीं नहीं, राक्षस था वो, हमको पता नहीं है, आपने बैल का वध कर दिया है। बैल और गाय जो हमारे लिए पूजनीय है, बैल पिता है, गाय माता है, आपने धर्म के प्रतीक बैल का वध किया है, आपको बैल की गौवंश की हत्या का पाप लगता है, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं बताओ उपाय, तो बताओ क्या करना है, अभी तो हुआ हो गया, अभी मेरे हाथ से जो भी हुआ आप समझ में आपको नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है वो बताओ। तो फिर गोपियाँ कहती हैं कि आपको ना सभी तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं मैं जाऊँगा, लेकिन आप फिर बताएंगे प्रूफ क्या है कि आपने स्नान किया है, इसलिए मैं सभी तीर्थों को यहीं बुलाता हूँ आपके सामने, सभी तीर्थों में यहीं पर स्नान करता हूँ। तो उन्होंने ये जो आपको चित्रपट दिखाई पड़ रहा है ना, ये चित्रपट के अभी दिखाता हूँ आपको। इस तरफ देखिए, ये राइट साइड में राधा कुंड है, लेफ्ट साइड में श्याम कुंड है। वहाँ पर जो एक अरिष्टासुर के पैर का एक गड्ढा बना था, उसको और बड़ा बनाया और सारे तीर्थों को, पर्वतों को, सरोवरों को, कुंडों को, नदियों को सब बुलाया, और सब व्यक्ति रूप में आए, देव और देवी बनकर आए और अपना जल सब यहाँ पर छोड़ा, और यहाँ पर ही वो विराजमान हो गए। बहुत सुंदर श्याम कुंड तैयार हो गया, और श्याम कुंड में सब कृष्ण भगवान ने और ग्वाल बालों ने स्नान किया, और फिर स्नान करके शुद्ध होकर, हाँ, गोपियों की दृष्टि से शुद्ध होकर लौट के आए, सबके आंखों के सामने सब तीर्थ प्रवेश किए और उन्होंने स्नान किया। तो फिर लौट के आए, बोला हम भी शुद्ध हो गए, अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने राक्षस का पक्ष लेकर हमसे वाद विवाद किया है। टेकिंग द साइड ऑफ द डीमन यू हैव फॉट विद अस, तो आपको भी पाप लग गया है, आपको भी सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। और बाय द वे, अगर आपको लगता है तो मेरे कुंड में भी स्नान कर सकते हो, तो ऑलरेडी रेडीमेड है। तो राधा रानी और गोपियाँ कहती है नहीं नहीं, आपके कुंड में तो अरिष्टासुर को मारने का पाप है जो आपने छोड़ा है, हम लोग स्नान करेंगे तो पाप हमको लग जाएगा, इसलिए हम लोग स्नान नहीं करेंगे, अपना कुंड अलग से बनाएंगे। तो गोपियों ने इस जगह से, अभी यहाँ तो राधा कुंड बना हुआ है, उस जगह से मानसिक गंगा तक लाइन लगाई और मानसिक गंगा का जल आके भरने लगी इसके अंदर। कहते हैं दो घड़ी तक, यानी 48 मिनट्स तक उन्होंने कोशिश किया, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रगति नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, अपने कंगन तोड़कर गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में पानी डालना शुरू किया, और कृष्ण ने इशारा किया था, हियर सिग्नल्ड ऑल द डेमीगॉड्स, ऑल द देवीज एंड देवज, जाना नहीं आप, रुको आपको सेवा मिलेगी, आप जाना मत। तो वो आकाश में वेटिंग में थे। हाँ, तो दो घड़ी प्रयास करने के बाद में, देखो शाम का समय था, पहले दो घड़ी युद्ध किया भगवान ने, तो दो घड़ी वहाँ पास हो गई, फिर कुंड बनाया, फिर कुंड में स्नान किया तो एक और घड़ी पास हो गई, फिर दो घड़ी राधा रानी और उन्होंने अपना कुंड बनाने के प्रयास में लगाया, तो कितनी घड़ी खत्म हो गई, पांच घड़ी, यानी 24 दो घंटे चले गए। दो घंटे के बाद में रात हो गई, बहुत कोशिश चल रही थी। तो फिर वो भगवान ने ना आकाश में खड़े हुए देवताओं को इशारा किया, नीचे आ जाओ आप, और उसमें से चार नीचे आए और उन्होंने राधा रानी के पास आकर याचना किया कि राधा रानी इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं आप, हम सब रेडी खड़े हैं यहाँ पर, जब चाहे आपको आपके कुंड में प्रवेश कर सकते हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो जब वो नम्रता से राधा रानी के सामने आए तो उस समय राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है आप हमारे कुंड में अपने प्रवेश करो। तो उसी समय पर दो तरह से प्रवेश हुआ, ऊपर से सभी कुंड वगैरह सभी देवी देवता प्रवेश किए, और राधा कुंड के नीचे से जल आया और वो इस कुंड में घुस गया, और दोनों तरफ से ये राधा कुंड तैयार हो गया। सभी देवी देवताओं ने जो व्यक्ति रूप में आए थे, सरोवर कुंड नदियाँ पर्वत वन वन सब आए थे पवित्र जन, वो सभी तीर्थ स्थान यहाँ पर प्रवेश कर गए। और उस समय जब राधा कुंड बना तो कृष्ण ने बहुत सारे वरदान दिए। कृष्ण ने कहा ये राधा कुंड नहीं है, ये जल नहीं है, ये राधा रानी का प्रेम है मेरे लिए, ये राधा रानी का प्रेम स्वरूप जल है, एक वरदान दिया। दूसरा वरदान दिया कि ये विश्व का सबसे उच्च तीर्थ स्थान बनेगा, सबसे ऊंचा धाम बनेगा, इसके ऊपर कोई धाम नहीं होगा, ये सर्वोच्च धाम होगा, नंबर टू। नंबर थ्री वरदान दिया, इसमें जो भी स्नान करेगा वो जिस उसके हृदय में राधा रानी के हृदय में कितना प्रेम मेरे लिए है उतना हृदय प्रकट हो जाए, उतना प्रेम प्रकट हो जाएगा। राधा रानी के हृदय में मेरे लिए जितना प्रेम है उतना प्रेम उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करेगा जब वो व्यक्ति इसमें स्नान करेगा, तीसरा वरदान। चौथा वरदान क्या दिया, इसमें जो स्नान करेगा तो राधा रानी मुझे कितनी प्रिय है उतना ही वो व्यक्ति प्रिय हो जाएगा। ऐसा बहुत मतलब दिल खोल के वरदान दे दिए और सर्वोच्च धाम बना दिया। तो फिर कृष्ण राधा रानी बड़ी खुश हो गई, उन्होंने कहा कि आप ऐसे 100 भी बैल मारेंगे ना फिर भी मैं तुम्हारे कुंड में स्नान करूंगी, श्याम कुंड में, पहले मना कर दिया था ना, बाद में उन्होंने कहा कि ऐसे 100 बैल भी आप मारोगे फिर भी मैं आपके श्याम कुंड में बड़े प्रेम से स्नान करूंगी। इसलिए श्याम कुंड में रोज सवेरे 11:48 पे कृष्ण राधा रानी पांडव घाट पे रोज स्नान करती है अपने 64 सखियों के साथ। क्या बताया मैंने, रोज सवेरे श्याम कुंड पे पांडव घाट पे अपनी 64 सखियों के साथ 11:48 पे स्नान करती है, ये उनकी कथा है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड विराजमान रहे, नीचे से उनका मिलन है ऊपर से मिलन है। राधा कुंड के विशेषता यह है कि राधा कुंड के ऊपर एक अदृश्य ब्रिज है, हाँ उसमें बीच के बीच में सिंहासन है, राधा रानी और कृष्ण उस सिंहासन में विराजते हैं, गोपियां सेवा करती हैं, नौका विहार करते हैं, जल विहार करते हैं। राधा कुंड उनका अति 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 उत्कट प्रेम का स्थान है। और तो उसके बाद में बज्रनाभ जी आए, उन्होंने फिर कुंड का जीर्णोद्धार किया, कुंड बसाया अच्छी तरह से। उसके बाद में क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु आए तब ये लुप्त हो चुका था। तो चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने देखिए आगे जाकर मैं जगह दिखाता हूँ आपको, चैतन्य महाप्रभु ने आकर ये जगह है, मैं आपको दोबारा ले जाऊंगा, देखो ये जगह है तमाल तला, ये तमाल तला में बैठे चैतन्य महाप्रभु और ध्यान लगाया तो उन्होंने दर्शन किया अपने दृष्टांत में राधा कुंड श्याम कुंड का, और आंखें खोलकर आकर वो छोटा सा जो डबका मराठी में कहते हैं मराठी में डबका, डबका मतलब थोड़ा सा छोटा पडल, उसमें छलांग लगाई और हरी बोल करके स्नान किया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर सन्यासी ये इतने कीचड़ में क्यों कूद रहा है। तो उन्होंने बताया कीचड़ नहीं है, ये राधा रानी का धाम है, राधा कुंड श्याम कुंड है। तो फिर वो जब एकदम बहुत ही जीर्ण अवस्था में था तो उस समय उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को उसका जीर्णोद्धार करने के लिए बताया। तो उस समय इसका नाम कंकण कुंड था क्योंकि कंकण से खोद कर बनाया गया था। तो कंकण कुंड को फिर विस्तारित करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड बनाया, और फिर राधा कुंड के बाद में श्याम कुंड को खुदाई करके बनाने का जब भी प्रयास किया तो पांडव उनके सपनों में आए। हाँ देखिए पांडव जी महाराज उनके सपनों में आए और उन्होंने कहा कि अरे आप हमें काटना मत, हम वहाँ पर 5 पेड़ बनकर 5 पांडव जो है वहाँ पर भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमारा पूजन कर रहे हैं, इसलिए हमें काटना मत। इसलिए राधा कुंड चौकोनी बना और श्याम कुंड जो है अलग अलग आकार का बना, क्योंकि इन पेड़ों को बचाकर उनके उनके आसपास से घुमाकर उन्होंने ये बनाया। तो ये युधिष्ठिर का पेड़ है, ये श्याम कुंड के किनारे पे है, इसी को पांडव घाट कहते हैं, इसी घाट के इसी के नीचे राधा रानी, देखिए ये पांडव घाट है, ये पेड़ है पांडव घाट पे, युधिष्ठिर का पेड़ है, पहले 5 पेड़ थे, अभी नष्ट हो गए, अभी एक ही पेड़ है, वो भी जीवन समाप्त हो गया उसका, लेकिन उसका अवशेष बाकी है उधर। तो ये सामने जो घाट दिखता है आपको, सीढ़ियां दिखती है, उसको पांडव घाट कहते हैं। उधर राजा रानी रोज स्नान करने आती है। अभी वापस चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा राधा कुंड का दर्शन करते ठीक से। राधा कुंड पे देखिए, ये तो आपको दर्शन करा दिया। उसके बाद राधा कुंड पे नित्यानंद प्रभु, बलराम जी के अवतार, जाह्नवा देवी इनकी पत्नी थी, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलने के लिए राधा कुंड आई थी। तो ये उनका प्राइवेट रहने की जगह है, जाह्नवा बैठक कहते हैं उसको। यहाँ पर बैठकर वो भजन करती थी और दिन में रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री मुख से चैतन्य चरितामृत सुनती थी, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनती थी। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन का उत्तरार्ध जो था, सेकेंड हाफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु लाइफ, उनके साथ बिताया था, तो सब यादें बताया करते थे। उसी सभा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी रहा करते थे और वहाँ से नोट बना के फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया है। और इस जगह पर जाह्नवा बैठक नाम से प्रसिद्ध है। ये पुराना दर्शन है और अभी ये नया दर्शन है। यहाँ पर तमाल का वृक्ष है, यहाँ पर बैठ के भजन करती थी, इसी में उनका प्राइवेट घाट है, नीचे उतर कर स्नान किया करती थी। और उसके आगे थोड़ा सा बाजू में ही राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ दास गोस्वामी का, राधा कुंड के किनारे पे है ये। उसका भी दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने बहुत समय तक राधा कुंड के किनारे भजन किया। एक बार वो इतने विरक्त थे कि 3 दिन में एक बार एक हाथ में चुल्लू में कितना पानी आता है उतना ही छाछ पीते थे, 3 दिन में एक बार, इतने विरक्त थे वो। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य का कोई तुलना करेगा ना तो वो केवल मर जाएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, इतना विरक्ति उनके अंदर थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं। तो ये इतने विरक्त थे कि खुली हवा में बैठकर जप करते थे। तो वृंदावन में तो इतनी भयंकर गर्मी होती है, इसमें एक बार जप कर रहे थे तो वहाँ राधा कुंड किनारे शेर आ गए। तो ये भजन में मग्न थे तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और डंडे से शेर को भगा दिया उन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी को सुरक्षित रखने के लिए। तो फिर सनातन गोस्वामी वहां पर परिक्रमा दे रहे थे, वो देखा उन्होंने, रे रघुनाथ क्या कर रहा है तू, राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए भजन कर रहा है कि उनको सेवा में लगाने के लिए भजन कर रहा है? तुमको पता है कृष्ण भगवान स्वयं आके तुम्हें रक्षा करने के लिए प्रकट होकर उन्होंने शेर को भगाया, फिर भी उन्होंने वहां पर अपना कुटी नहीं बनाया। उनका एक ही रिक्वेस्ट था कि आप कुटी में भजन करो, अंदर बैठ के करो ताकि आपको बाहर का कष्ट ना हो। फिर अगली बार गर्मी आई तो गर्मी में बहुत सारा कष्ट था, तो गर्मी में उन्होंने भजन करना शुरू किया तो इतना प्रचंड गर्मी थी कि त्वचा जो है ना, त्वचा स्किन, वो जल रही थी। तो राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी ने क्या किया, अपना जो पल्लू है ऊपर का पकड़ के ऐसे रघुनाथ दास के ऊपर फैलाया और छाया बनाई उसके लिए, और खुद धूप में खड़ी होकर राधा रानी के कपाल पर पसीना आया। तो वापस सनातन गोस्वामी ने देखा, अरे रघुनाथ तुम क्या कर रहे हो, राधा रानी की सेवा करने के लिए आए हो, यहाँ पर राधा रानी को सेवा देने के लिए आए हो? बोला क्या हुआ? तो कहते तुम भजन कर रहे हैं और राधा रानी तुमको छाया दे रही है, खुद गर्मी में तड़प रही है। तो तब राधा रानी, तब ये कथा सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक कुटी बनाई अपनी और कुटी के अंदर भजन करने लगे। फिर उनको लगा कि महाप्रभु जी के विरह में उनको लगा आत्महत्या करना चाहिए। तो वापस सनातन जी ने कहा, अरे तुम दूसरे की प्रॉपर्टी नष्ट कैसे कर सकते हो? तो उनको बोला, समझा नहीं मैं कुछ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, कौन किसकी प्रॉपर्टी नष्ट कर रहा हूं मैं? उन्होंने कहा, संन्यास के समय पर अपना शरीर, अपना मन और अपनी वाचा हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। हमारा शरीर और मन और वाचा जो है ना, वो भगवान की प्रॉपर्टी बन जाती है। अभी तुम आत्महत्या करके सोच रहे हो, मतलब भगवान की प्रॉपर्टी आप नष्ट करने जा रहे हो, जो आपका है ही नहीं, वो उसको नष्ट करने का अधिकार किसने दिया आपको? तब जाकर उन्होंने कहा कि देखो, आपने चैतन्य महाप्रभु के साथ में इतना समय बिताया है, लोगों को उनकी कहानी सुनाओ, लोगों उनकी उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा लोगों को। तो फिर उसके बाद में फिर सनातन जी के आज्ञा के अनुसार रघुनाथ जी ने राधा कुंड किनारे बैठकर बहुत सारा गौर लीला का वर्णन किया है। बहुत सारे वैष्णव आकर वहाँ पर उनके गौरांग महाप्रभु की कहानी सुनते थे। तो जब उनका देहांत हुआ ना, तो उसमें मुसलमान लोग साधुओं का, हिंदू साधुओं का समाधि कुरेद कुरेद कर उनके शरीर की विटंबना करती थी। तो ये आतंक को देखते हुए जीव गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी का जो शरीर था उसका दाह संस्कार किया, उनको समाधि देने के बदले में दाह संस्कार किया, और उनकी रक्षा जो है ना, उनकी अस्थि वो यहाँ पर समाधि में रखी हुई है। तो यहाँ पर उनका शरीर नहीं है, उनको शरीर के जलाने के बाद जो रक्षा है वो उसकी समाधि बनाई गई है, ताकि उनकी विटंबना ना हो, उनका इंसल्ट ना हो, उनका मुसलमानों की तरफ से वो कष्ट ना हो उनको। तो ये समाधि को प्रणाम कीजिए। रघुनाथ दास जी महाराज बहुत ही श्रेष्ठ विरक्त आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, उनको कहा गया है कि वो प्रयोजन आचार्य हैं, प्रयोजन आचार्य यानी राधा कृष्ण के प्रेम में जो परिपूर्णता है उसको देने वाले आचार्य हैं। इनके विग्रह राधा गोपीनाथ जी हैं, जिनका आपने पहले दर्शन कर दिया, देखो राधा गोपीनाथ जी हैं और ये समाधि है उनकी। और फिर ये जो पूरा है ना, जो आपको जानवा बैठक दिखाई पड़ रही है, वहाँ से ये पूरा घाट जो है, इस घाट को रघुनाथ दास गोस्वामी घाट कहते हैं। और जो व्यक्ति बैठा ना वहाँ पर, एक पीली धोती पहना हुआ है, एक बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ जो आदमी है उसके बाजू में दरवाजा है और वहाँ से समाधि का एंट्री है। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये समाधि है उनकी दूर से। फिर आप बाहर निकलेंगे परिक्रमा करने के लिए और तुरंत ही आपको ललिता कुंड दर्शन आएगा। तो ललिता कुंड का महात्म्य ये है कि जब ये राधा कुंड बना तभी आठों सखियों ने अपने आठ कुंड बनाए यहाँ पर। तो अभी बाकी सब तो कुंड लुप्त हो गए, लेकिन ललिता कुंड यहाँ पर अभी बहुत सुंदरता से दोबारा बनाया गया है। और ललिता कुंड, ये ललिता जी का कुंड है, यहाँ पर आठ प्रकार के जीवों की हत्या करने के पाप से मुक्ति मिलती है जो जीव ललिता कुंड में स्नान करता है। तो आप कृपा करके इसमें स्नान कीजिए, इसका आचमन कीजिए, यहाँ तक कि जो गर्भपात का पाप करते हैं ना, उनका भी यहाँ पर पाप शालन होता है। ऐसे शास्त्र में लिखा है कि गर्भपात करने का जो पाप है उसका कहीं भी उपाय लिखा नहीं गया है, वो इतना जघन्य पाप है। लेकिन ललिता कुंड में स्नान करने से गर्भपात का पाप भी नष्ट हो सकता है। फिर ये राधा गोविंद जी का मंदिर है, जबी वृंदावन से सभी विग्रह हमारे गोस्वामियों के विग्रह मुसलमानों के आक्रमण के वजह से शिफ्ट हो रहे थे, तो सभी शिफ्ट हुए वृंदावन के बाहर और सभी कुछ समय आकर राधा कुंड में रुके थे। तो राधा गोविंद जी भी रुके हैं वहाँ पर। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो राधा गोविंद जी का मंदिर मिलेगा आपको, उसके आगे जाएंगे तो आपको ये तीन समाधि मिलेगी तीन गोस्वामियों की, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये तीनों एक दिन पे अलग अलग साल पे एक ही तिथि में गुजरे थे, तो इनकी तिथि ये समाधि एक ही जगह बनाई गई है, उनको आप प्रणाम कीजिए। वैसे तो देखा जाए तो राधा कुंड किनारे में हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस आते हैं, सैकड़ों जगहें हैं, एक दिन में एक घंटा में वर्णन करना मुमकिन नहीं है। राधा कुंड में सेपरेटली आना होगा और पूरा दिन 6 घंटे वहाँ पर कथा करनी होगी, तो आपको समझ में आएगा राधा कुंड किनारे में क्या क्या है, क्योंकि औरंगजेब के हमले में सारे विग्रह यहाँ पर आके विराजमान हुए। तो जितने मंदिर वृंदावन में है वो सारे मंदिर राधा कुंड में भी है। फिर हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गुणमंजीर के अवतार थे, एक ही दक्षिण भारतीय गोस्वामी थे ये, इनका भी भजन कुटी है इसमें, और यहाँ पर ये रहते हैं राधा कुंड के किनारे पे। और इनके पास भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी आए थे और वो उन्होंने कहा था कि वो सबका आशीर्वाद दे रहे थे चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। तो गोपाल भट्ट जी ने कहा कि मेरी आपको पूरा आशीर्वाद है, आप लिख सकते हो, एक ही कंडीशन मेरी है, मेरा नाम उसमें कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो प्रमुख गोस्वामी होने पर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं है, तो बाकी सारे शास्त्रों में उनका नाम आता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम कीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कृष्णदास गोस्वामी हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने इस स्थान पर बैठकर चैतन्य चरितामृत का लेखन किया है। यानी कि राधा कुंड इतनी महत्वपूर्ण जगह है, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी यहाँ लिखा गया है, इसी कमरे में लिखा गया है। 90 साल की आयु में दृष्टि भी कमजोर हो गई थी उनकी, कान भी कमजोर हो गए थे, शरीर बहुत बुढ़ा था। इस अवस्था में सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा राधा कुंड की परिक्रमा से बाहर निकलकर 2 मिनट वॉकिंग करेंगे तो हम ठाकुर भक्ति विनोद का घर आएंगे। ठाकुर भक्ति विनोद का घर यहाँ पर है, इसका नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। ये गौलोक धाम में जो ललिता सखी का कुंज है उसका नाम है, तो अब अंदर प्रवेश करेंगे, देखिए इस घर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर उनकी बैठक है, ठाकुर भक्ति विनोद, उनके पुत्र प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, ये इनका बैठक है। इसके आगे जाएंगे तो आप देखेंगे ये इनका सोने की जगह है ठाकुर भक्ति सिद्धांत की, और फिर आगे जाएंगे तो उनके ये चप्पल यहाँ पर रखे हुए हैं पादुका। सबको प्रणाम कीजिए जल्दी जल्दी, और हम फिर घूमकर श्याम कुंड आएंगे। राधा कुंड को ऐसे पार करते हुए हम श्याम कुंड आएंगे। बीच में जीव गोस्वामी की भजन कुटी है, और राधा दामोदर जी का मंदिर है, फिर गोविंद जी का मंदिर है, फिर आगे चले जाएंगे तो ये श्याम कुंड आएगा। श्याम कुंड में ये पांडव घाट है, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का वृक्ष है, फिर तमाल तला है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान किया था और राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया था, और ये धर्मराज का ट्री है, और ये श्याम कुंड है। ये श्याम कुंड में चैतन्य महाप्रभु के बैठने की जगह है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल भी विराजमान है, उनको आप प्रणाम कीजिए। चैतन्य महाप्रभु कृपा से राधा कुंड श्याम कुंड दोबारा प्रकट हो गया, तो महाप्रभु जी के हम बड़े ऋणी हैं। और हम आगे चलते हैं, ये तमाल का पेड़ है जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु ने रो रो कर भजन किया था। वापस श्याम कुंड का दर्शन है, बहुत सुंदर। और हुआ ये कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत लोग यहाँ पर भैंस धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, हाथ पांव धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, तो उनको पता था कि ये कुंड इतना श्रेष्ठ और इतना सर्वोत्तम है, इसमें ऐसे ये घरगुती काम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुआं बनाने का सोचा, थोड़ा राधा कुंड श्याम कुंड के किनारे के बाहर थोड़ा सा अलग से कुआं बनाना सोचा। तो कुआं बनाते हुए कुआं खोद रहे थे, तो जो कर्मचारी थे जो कुआं खोद रहे थे, ध्यान से सुनना, जब कुआं खोद रहे थे तो अचानक खून की धार निकली, ऐसे फवारा उड़ गया आकाश में, तो सब कर्मचारी डर गए और वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आए, बोले महाराज जी हमने जो तोड़ रहे थे उसको खोद रहे थे तो खून के फवारे निकले, तो तुरंत उन्हें काम बंद करवाया। और रात को फिर गोवर्धन स्वप्न में आए व्यक्ति बनकर, और रघुनाथ जी से कहा कि तुमने मेरी जिह्वा पर आघात किया है, वो मेरी जिह्वा है, मेरी जबान है, माई टंग, यू हैव हिट माई टंग, तो बोले क्या करें, तो उन्होंने कहा कि इस जिह्वा को निकालो और अच्छी तरह मंदिर में स्थापन करो और उसका पूजन करो। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस शिला को निकाला और फिर ये उनकी जिह्वा है, ये गोवर्धन की जिह्वा है, इसको मंदिर में स्थापन किया गया है। ये राधा कुंड श्याम कुंड के बीच के गली में सुंदर मंदिर है, जहाँ पर ये जिह्वा मंदिर कहते हैं, और जिह्वा जगन गोवर्धन की जिह्वा यानी कि टंग को यहाँ पर स्थापन किया गया है। थोड़ा आगे जाएंगे कुआं से तो राइट साइड में माधवेंद्रपुरी की भजन कुटी है, एक तो उधर भी थी गोविंद कुंड पे, एक यहाँ पर भी है। माधवेंद्रपुरी ने यहाँ पर राधा कुंड किनारे बैठकर भजन किया है, बहुत सुंदर, उनको प्रणाम करते हैं माधवेंद्रपुरी जी को। और फिर आगे बढ़ते हैं तो नित्यानंद प्रभु भी एकांत में आकर यहाँ रुके हैं, नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आकर रुके हैं, तो उनके भी चरण चिन्हों का यहाँ पर दर्शन है। नित्यानंद पद कमल को आप वंदन कीजिए, इन्होंने भी एकांत वास किया था राधा कुंड में आकर। उसके आगे हम लास्ट में आएंगे, और अभी आपको उसमें उतरना है और स्नान करना है और आचमन करना है, प्रार्थना करनी है। राधा कुंड में क्या प्रार्थना करेंगे, राधा कुंड में प्रार्थना करना है कि हमें राधा कुंड राधा कृष्ण की सेवा का अवसर मिले, उनके भक्तों की सेवा करने का अवसर मिले, हमारा जीवन उनकी सेवा के लिए है। और रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत नाम के ग्रंथ में बताते हैं कि राधा कुंड का निवास, चाहे वो एक घंटे का हो, एक दिन का हो या परमानेंट हो, राधा कुंड में निवास करना चाहिए। यात्रा भी राधा कुंड का भी निवास है, राधा कुंड मतलब आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे हम लोग वहाँ उसके आसपास रहेंगे तो भी उसका निवास हो जाता है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड का निवास अभी हम मन से कर रहे हैं, हमारे आत्मा से कर रहे हैं, तो ये भी राधा कुंड का निवास है। तो मन से आप वहाँ रहिए, उसके जल में उतरिए, उसका स्नान कीजिए, प्रणाम कीजिए। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, किसी को स्नान करने का परमिशन देते नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि राधा कुंड में स्नान करने के लिए हमारी योग्यता नहीं है। जिनके मन में से काम वासना पूर्ण नष्ट हो गई है और जिनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है, वही इसके अंदर स्नान कर सकते हैं। तो आप आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए और उत्कट भावना से प्रार्थना कीजिए कि कृष्ण की भक्ति मिले, हमारा जीवन धन्य हो। तो ये आखिरी दर्शन है, ठीक से एक बार देख लीजिए राधा कुंड श्याम कुंड को, दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये श्याम कुंड है, यहाँ पर भी आपने आचमन किया ही होगा, दोबारा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। इसके ना एक किनारे पे वो पांडव घाट है, इसके किनारे पे पाशाखेला घाट है। पाशाखेला घाट यानी राधा रानी ललिता देवी सब मिलकर कृष्ण से चौसर का खेल खेलते थे और राधा रानी कृष्ण को हराती थी। यहाँ पर पाशाखेला यानी पाशाखेला यानी चौसर यानी द्यूत क्रीड़ा, इसी किनारे बैठकर खेलते थे। तो उसको दर्शन कीजिए, आगे आइए, ये जीवा मंदिर का दर्शन करिए, फिर उसके बाद में हम आएंगे राधा कुंड किनारे। फिर यहाँ पर एक बार आखिरी बार प्रणाम कीजिए। ये विश्व का सर्वोच्च तीर्थ स्थान है, इसके ऊपर कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ये बहुत ही श्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। तो अच्छी तरह प्रणाम कीजिए और हम आगे जाएंगे तो हमको कुंडेश्वर महादेव का दर्शन होगा, जो ये महादेव जी राधा कुंड का रक्षण करते हैं। तो कुंडेश्वर महादेव को प्रणाम कीजिए और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। अभी हम लोग ऐसे घूम के आए थे, राधा कुंड श्याम कुंड हमने कवर कर लिया, अभी हम लोग लेफ्ट टर्न जाएंगे और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कुसुम सरोवर आएगा। तो देखिए ये कुसुम सरोवर का दर्शन आप करेंगे, अभी शाम का समय है, कुसुम सरोवर में आप पहुँच गए हैं। ये कुसुम सरोवर बहुत ही उत्कट स्थान है, पहले उसका आप दिल भर के दर्शन कर लीजिए। हाँ, कितना विशाल कुंड बना हुआ है, इतना सुंदर उसके छतरी बनी हुई है, बैठने की जगह है, बहुत सुंदर विशाल कुंड बना हुआ है। तो श्री कुसुम सरोवर धाम की जय हो। देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर विशाल कुंड है। तो इसकी कहानी आप सुनिए, ये पहले तो कुसुम वन है जिसके अंदर ये कुसुम सरोवर बना हुआ है। कुसुम वन में राधा रानी फूल बिनने के लिए आया करती थी और राधा रानी सखी आकर फूल बिनती थी, तो कृष्ण यहाँ माली बनकर आते थे और उनको पकड़ते थे, डांटते थे, कभी वाद विवाद करते थे, बहुत सारा सुंदर चटपटी लीलाएं यहाँ पर हैं। एक ना पितृपक्ष के हमारे समय पर वृंदावन में एक उत्सव होता है, इसका नाम है सांझी लीला। और सांझी लीला में क्या करते हैं, गोबर से देवी का मूर्ति बनाते हैं, जमीन पर बनाते हैं या दीवार में बनाते हैं, सांझी कहते हैं उसको, सांझी देवी, वो भवानी देवी का अवतार है। और पितृपक्ष के काल में रोज शाम को, सबको म्यूट कर दीजिए, तो सांझी लीला के उपलक्ष में फूल बिनने के लिए सब सखियां यहाँ पर आती थी। तो एक कहानी ऐसी है कि सखियां फूल बिन रही थी यहाँ पर, तो कृष्ण माली बनकर आते हैं और सब सखियां भाग जाती हैं, राधा रानी अटक जाती है, तो राधा रानी अकेली हो जाती है। तो उसके बाद कृष्ण अपना दर्शन देते हैं, माली का बेस निकाल देते हैं, तो कहती है कि अरे आप, मुझे तो डर गई थी मैं माली को देखकर, आपने इतनी बड़ी बड़ी मूछें लगाई है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे मुझे, लाल लाल आंखें। तो उन्होंने कहा कि आज सब गोपियों को छोड़कर आपके साथ अकेले लीला करने का दिल था, इसलिए मैंने ये लीला किया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो फूलों को, बोले कुछ फूल तो ये गड़बड़ में जमीन पे गिर गए, माटी में गिर गए, तो हम लोग जमुना में धोते हैं। तो कहते चलो जमुना जाएंगे धोएंगे। तो राधा रानी कहते नहीं नहीं आपके साथ में कैसे अकेले जाऊंगी, जनता क्या कहेगी, मैं नहीं आ सकती, सब पब्लिक में मैं नहीं आ सकती। तो भगवान ने जमुना जी को यहाँ बुला लिया, अपने पैर से गड्ढा बनाया कुसुम वन में और यमुना जी को यहाँ बुला लिया और पूरा कुंड बन गया। ये यमुना जी का जल है, गोवर्धन में यमुना जी का जल प्रकट हो गया कुसुम सरोवर के रूप में। फिर कृष्ण भगवान ने सारे जो मट्टी लगे हुए थे फूल धोए और इसके किनारे में बैठकर विनती की राधा रानी से कि क्या मैं आपको इनका श्रृंगार कर सकता हूँ क्या। राधा रानी ने कहा था हम रोज आपका आपके लिए माला बनाते हैं, तो कृष्ण ने कहा कि रोज आप बनाते हो तो आज मैं आपके बालों का श्रृंगार करूँ क्या। तो फिर कृष्ण भगवान ने यहाँ पर इस किनारे में बैठकर राधा रानी के बालों का श्रृंगार किया है। सबको म्यूट करो एक बार दोबारा। तो इस प्रकार से कुसुम सरोवर के किनारे में हर रोज कृष्ण भगवान राजा रानी के बालों को सवारते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। दूसरी बार कई लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं कुसुम सरोवर की। उसमें एक प्रधान लीला ऐसी है कि यहाँ पर नारद मुनि आए थे और नारद मुनि ने राधा रानी से प्रार्थना किया था कि मुझे आपका अष्ट सखियों के साथ दर्शन चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ। तो वो कुसुम सरोवर आए तो माधवी गोपी और वृंदा देवी उनको मिले। उन्होंने उनका हरे कृष्णा तो माधवी गोपी और वृंदा गोपी इन्होंने मिलकर नारद मुनि को यहाँ पर स्नान कराया। उसके लिए उसके कारण उनको गोपी का शरीर प्राप्त हुआ। तो वो नारद ही या गोपी बने, नारद मुनि गोपी बने। और गोपी बनने के बाद में वृंदा गोपी और माधवी गोपी ने उनका श्रृंगार किया, बहुत सुंदर गोपी बनाया। और इसके बीच में एक अदृश्य कमल रहता है, उसमें राधा कृष्ण विराजमान रहते हैं। उसके अंदर अदृश्य ब्रिज भी है ये सरोवर के बीच में। तो वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर 8 सखियाँ राधा और श्याम सुंदर की सेवा कर रहे थे, उनका दर्शन किया उन्होंने, चामर सेवा किया। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने आदेश दिया कि आप यहीं रहो और भक्ति सूत्र ग्रंथ का लेखन करो। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे दक्ष राजा का शाप है, मैं 3 दिन के ऊपर कहीं रह सकता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा वो शाप जो है ना वो भौतिक दुनिया में है, मटेरियल वर्ल्ड में है। हाँ, आप यहाँ पर मेरे घर पे हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, यहाँ पर वो शाप लागू नहीं है। आप कहीं भी रह सकते हो, जितना मर्जी रह सकते हो। तो फिर नारद मुनि यहीं से आगे गए हैं, नारद वन, नारद कुंड नाम का एक जगह है, वहाँ पर नारद मुनि ने आराम से अपने कुंड में रहते हुए भजन करते हुए नारद भक्ति सूत्र इन ग्रंथों का लेखन किया है। और कथा यह है कि जब कृष्ण की पत्नियां कृष्ण के जाने के बाद बहुत दुखी हुई थी तो वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने बहुत सुंदर हरिनाम संकीर्तन किया है। और सुंदर हरिनाम संकीर्तन करके उद्धव जी को प्रकट किया है। उद्धव जी यहाँ पर गुलबलता के रूप में थे तो उद्धव जी यहाँ पर प्रकट हुए और उद्धव जी ने यहाँ पर कृष्ण की पत्नियों को एकदम ध्यान से सुनिए, एक महिमा है हरिनाम संकीर्तन की, कितने प्रेम से उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया। तो उद्धव जी तृण के पत्ते के रूप से मनुष्य रूप में प्रकट हुए और इस जगह पर बैठकर उन्होंने 30 दिन तक कृष्ण की पत्नियों को भागवत सुनाया। सुखदेव जी ने तो भागवत 7 दिन का सुनाया था, उनको टाइम का लिमिट था ना उस समय, लेकिन इनको कुछ टाइम की पाबंदी नहीं थी। तो बड़े ही प्रेम से 30 दिन तक उद्धव जी ने इसके किनारे उनको भागवत सुनाया है। जब कृष्ण भगवान द्वारका से जाने का प्लान कर रहे थे तो उद्धव जी को समझ में आया था कि कृष्ण भगवान अभी जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कृष्ण भगवान को मैं भी आपके संग में आना चाहता हूँ, जहाँ पर आप जाएंगे मैं आना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा था नहीं, आपको सेवा है, आप नहीं जा सकते मेरे साथ, आपको मेरे पत्नियों का उद्धार करना है, जब मैं जाऊँगा तो मेरी पत्नियाँ दुखी हो जाएंगी। तो इसलिए उद्धव जी रुके थे यहाँ पर। और फिर उद्धव जी ने, अभी देखिए एक भागवत का भी महात्म्य कुसुम सरोवर में प्रकट हो गया है, क्योंकि कृष्ण की पत्नियां जी थे ना वो सभी रो रही थी कृष्ण के विरह में, कृष्ण नहीं है इसलिए रो रही थी। तो उस समय जब उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक का वर्णन किया, उसी समय उनको कृष्ण का संग का अनुभव हुआ और उनका दुख नष्ट हो गया, रोना धोना बंद हो गया। इसका मतलब क्या, जिस कृष्ण को पाने के लिए या उनके विरह में सभी कृष्ण की पत्नियां रो रही थी, उनके ही उपस्थिति का सानिध्य का अनुभव उनको हुआ। दे वर इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा सो दे फेल्ट द कंपनी ऑफ कृष्णा, द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा व्हेन दे हर्ड श्रीमद् भागवतम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, श्रीमद् भागवत इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं ना तो कृष्ण साक्षात हमारे साथ संग दे रहे हैं हमको। तो इस तरह से उसके बाद में 30 दिन तक कभी भी कृष्ण की रानियां रोई नहीं, वो श्रीमद् भागवतम सुनती रही, कृष्ण का संग का अनुभव लेती रही। अपने आप की लीलाओं का भी श्रवण किया उन्होंने, दे ऑल्सो हर्ड देयर ओन स्टोरीज। और उसके बाद में 12वें स्कंद का पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने अपने ही रूप में वो विलीन हो गई और गोलोक धाम चली गई। इतनी महत्वपूर्ण जगह देखिए आप, इसी जगह से कृष्ण की 16,108 पत्नियों का उद्धार हुआ है, यहीं से वो गोलोक चली गई हैं अपने स्वरूप को प्राप्त करके। उसके बाद में एक लीला यहाँ पर ऐसी है कि अष्टावक्र मुनि ने यहाँ पर तपस्या की है और कृष्ण का अवतार होने पर कृष्ण ने हमको यहाँ पर दर्शन दिया है और कृष्ण का दर्शन करके यहीं से वो गोलोक धाम चले गए अष्टावक्र मुनि। और अष्टावक्र मुनि की समाधि भी यहाँ पर है, जहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है वहाँ पर अष्टावक्र मुनि की समाधि कुसुम सरोवर के किनारे में है। कुसुम सरोवर के किनारे में बलराम जी का मंदिर है और बलराम जी यहाँ पर क्यों बैठे हैं इसका एक रहस्य है। वो कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं लेकिन कृष्ण को संकोच देना नहीं चाहते, इसलिए वो यहीं बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठकर राधा कुंड के घेरे में जो लीलाएं चल रही है उसका दर्शन कर रहे हैं, ये उनका भाव है। इसलिए अष्टावक्र की समाधि के बाजू में उद्धव जी की बैठक है, उद्धव जी की बैठक के बाजू में बलराम जी की बैठक है, उद्धव जी की बैठक भी यहाँ पर है, मैं आपको दर्शन कराता हूँ उनके। देखिए ये उद्धव जी की बैठक है, ये उद्धव जी यहाँ पर विराजमान है जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों को भागवत सुनाया था, ये उसका दर्शन है। और ये दर्शन जो है ये राधा बन बिहारी जी का मंदिर है इसके किनारे में, जो अभी भक्ति वेदांत अस्पताल और राधा गोपीनाथ मंदिर के सौजन्य से चल रहा है, हमने ट्रस्ट बनाया उसके लिए। और इसमें एक बाबूजी थे, उनके पास मूर्ति थी कि कैसे मूर्ति थी, कृष्ण भगवान राधा रानी के बालों का श्रृंगार कर रहे हैं। और क्या भाव है उसका, कृष्ण भगवान श्रृंगार कर रहे हैं तो राधा रानी आईना लेकर कृष्ण के मुख को आईने में देख रही है, ये भाव है। देखिए आप, अभी मूर्ति तो चोरी हो गई, उसके बाद में फिर ये शालिग्राम ये गोवर्धन शिला को राधा कृष्ण बना दिया है। देखिए गौर से देखिए, कृष्ण के दाहिने हाथ में कंघी है और बाएं हाथ में उन्होंने राधा रानी के बाल को संवार रहे हैं वो, और राधा रानी नीचे बैठी हुई है और हाथ में उन्होंने अपना, हाथ में क्या किया है, हाथ में उनके वो आईना पकड़ा हुआ है और वो आईने में कृष्ण को देख रही है बालों को संवारते हुए। ऐसा सुंदर दर्शन है। और ये जो कुसुम सरोवर है इसको गोवर्धन का हृदय माना गया है, उसकी जीवा भी आपने देखी गोवर्धन की, दो आंखें राधा कुंड श्याम कुंड है और हृदय जो है ये कुसुम सरोवर है। इसके थोड़ा आगे जाएंगे कुसुम सरोवर को पार करते हुए तो ये नारद कुंड है, यहाँ पर नारद मुनि ने बैठकर भजन भी किया और नारद भक्ति सूत्र का भी लेखन किया। एक बात बताना और रह गया, ये जो कुसुम सरोवर है ना, ये जो बड़ी बड़ी छतरियां बनी हुई है इसके अंदर राधा और कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, और वो राजा महाराजा थे, जयपुर के महाराजा थे, यहाँ पर बैठकर वो गर्मी के समय पर ठंडी ठंडी हवा खाते थे, हवा महल कहते हैं इसको। तो ये सुंदर स्ट्रक्चर जो है वो मधुकर राजा तोरडमल ने बनाया था, लेकिन अभी राधा रानी के चरण कमल भी है, उसके छत पर ऊपर बहुत लीलाओं का पेंटिंग भी किया गया है, बहुत रमणीक स्थान है ये भजन करने के लिए। देखिए आप कितना सुंदर स्थान है, आप यहाँ पर आराम से बैठकर आचमन कीजिए, जमुना जी का स्नान कीजिए, पूजन कीजिए और आगे बढ़िए और नारद कुंड में आइए, नारद कुंड में भी आचमन कीजिए। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, देखो सुंदर पीपल का पेड़ है और ये थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में है लेकिन है अभी भी अस्तित्व में है नारद कुंड। और ये नारद मुनि का वहाँ पर विग्रह है, नारद मुनि बड़े भाग्यशाली हैं, उनको दो तीन बार कृष्ण के लीला में गोपी बनकर प्रवेश करने का मौका मिला वृंदा देवी की कृपा से, और दो तीन बार उनकी कहानी आती है कि इसमें वो गोपी बने, फिर गोपी शरीर में उनको प्रवेश मिला, उन्होंने सेवा की, राधा कृष्ण की दर्शन लिया, कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर वो भजन करते वहाँ पर। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नारद कुंड भी थोड़ा सा परिक्रमा के हटकर है बाहर से, फिर रास्ते पे आएंगे मेन, वापस कुसुम सरोवर के किनारे आएंगे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अभी गोवर्धन का दर्शन होना आरम्भ हो जाएगा, धीरे धीरे क्यों ना हो आरम्भ हो जाएगा दर्शन होना। तो ये हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये ग्वाल पोखरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये ग्वाल पोखरा के हम दर्शन कर रहे हैं। ये जो हमने कल बताया था आपको ग्वाल पोखरा, ये गोपालों का कृष्ण का बहुत ही प्रिय स्थान है, नंबर वन का प्रिय स्थान है, जहाँ पर सब ग्वाल बाल कृष्ण भगवान बलराम जी यहाँ पर अपनी साख्य लीला करते हैं, अपना टिफिन खाते हैं, टिफिन चुराते हैं, टिफिन फेंकते हैं, कैच कैच खेलते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, क्या क्या नहीं करते यहाँ पर, कभी पंछी बनते हैं, कभी मेंढक बनते हैं, कभी मंकी जैसा अदा करते हैं, कभी छिना झपटी खेलते हैं, कभी गधा बनते हैं, कभी चोर सिपाही खेलते हैं, और मेन चीज़ यहाँ बैठकर प्रसाद पाते हैं। ये बहुत सुंदर स्थान है, कृष्ण का नंबर वन का प्रिय स्थान है ये। यहीं पर वो लीला हुई थी जो मधुमंगल आया था, मधुमंगल और कृष्ण भगवान है ना, वो राधा रानी के लिए पुजारी बनकर जाते थे सूर्य कुंड पे, राधा कुंड से निकल कर सूर्य कुंड जाकर ये पूजा करते थे सूर्य देव की, और वहाँ से आते थे तो दक्षिणा में मधुमंगल को बहुत लड्डू मिलते थे, तो यहाँ पर आकर जब लड्डू खाते खाते आते थे तो धोती में छुपा कर लड्डू लेके आते थे, तो सभी ग्वाल बाल ना दूर से देखते थे कि अकेला ब्राह्मण लड्डू खा रहा है, तो सब लोग आकर उसको झपटते थे और सब लड्डू लूट कर खाते थे उसके, बहुत तंग करते थे उसको। तो ये भी लीला यहीं पर हुई है, और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं भगवान की, साक्षी लीला की बहुत सारी लीलाएँ यहाँ पर होती है, और अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है गोविंद लीलामृत, उसमें सारा बहुत सारा वर्णन इनका है, प्रसाद पाने का और ग्वाल पोखरे का वर्णन भी उसके अंदर है। तो ग्वाल पोखरा इस सुंदर स्थान को आप प्रणाम कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको मोरों का दर्शन होगा यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर मोर घूमते हैं यहाँ पर, तोता घूमते रहते हैं, कोयल घूमती रहती हैं। तो ये बहुत अंदर जंगल में जा रहे हैं हम, ये रत्नकुंड का रास्ता है, श्याम कुटी कहते हैं उसको, श्याम वन, ये भगवान की एक अंतरंग रास की सली है, यहाँ पर भगवान रास रचाते हैं। तो हम अंदर जाएंगे, तो मैंने कल कहा था आपको कि जहाँ पर भगवान के राधा रानी के हाथ के पैर के शरीर के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर दर्शन करने से दोबारा कभी भी भौतिक दुनिया में जन्म नहीं होता है। तो ये शिला में भगवान के चरण चिन्ह हैं, राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, बहुत सारे चिन्ह हैं इसके, एक ही के अंदर एक प्रधान दिख रहा है आपको जो चौक से उसको डिमार्केट किया है, लेकिन बहुत चरण चिन्ह एक ही शिला के अंदर है। आप प्रणाम कीजिए, बहुत सुंदर इन शिलाओं का प्रणाम कीजिए और आगे बढ़िए। इसमें एक बड़ा चरण चिन्ह है, देखिए आप, तो ये बड़ा चरण चिन्ह है, कृष्ण का चरण चिन्ह है। यहाँ पर अभी हमने अभी उसको पूरा अभी मंडवा दिया है इसको, बहुत ये बहुत पुराना पिक्चर है। ये भी शिलाएं हैं यहाँ पर भगवान ने लीला की है, ये बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ पर बहुत छोटे कद में गोवर्धन मिलेगा आपको, जैसे अभी जमीन के ऊपर आ रहा है ऐसे लगेगा आपको। फिर ये रत्नकुंड का रास मंडल है, यहाँ पर भगवान रास करते हैं, बहुत भगवान की प्रिय रास स्थली है ये, रास मंडल को प्रणाम कीजिए। पर उसके पीछे जो है रत्नकुंड है, देखिए आप, ये रत्नकुंड है और यहाँ पर कृष्ण भगवान रास करते हैं राधा रानी के साथ में, और ये बहुत एकांत स्थली, यहाँ पर अधिक लोग जाते नहीं हैं, इसलिए भजन करने के लिए बहुत उत्कृष्ट स्थान है ये, बहुत एकांत शांत और रमणीय स्थान है। तो रत्नकुंड को प्रणाम कीजिए, आचमन कीजिए, हृदय की प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़िए। रत्नकुंड के श्याम वन में ये स्थान वो है जहाँ पर रत्न सिंहासन पर राधा रानी बैठती थी, और रत्न सिंहासन पर राधा रानी बैठती थी और सब सखियाँ उनकी सेवा करती थी। तो ये रत्न सिंहासन व्योमासुर ने चुराया था, इसलिए अभी उस जगह पर रत्न सिंहासन नहीं है, लेकिन इस जगह पर रत्न सिंहासन पर बैठते हुए राधा रानी की सेवा सब सखियाँ करती थी। तो आइए दोबारा एक बार हम दर्शन करें रत्नकुंड का, ये बहुत सुंदर स्थान है। पहले चरण चिन्ह का दर्शन कीजिए, फिर बड़े कृष्ण के चरण चिन्ह का दर्शन कीजिए, फिर और सखियों का और शिलाओं का दर्शन कीजिए, उसके बाद रास मंडल का दर्शन है, उसके बाद रत्नकुंड का दर्शन है बहुत सुंदर, फिर रत्न सिंहासन जहाँ पर था उस स्थान का दर्शन है। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभी 2-3 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी बची हुई है, उसमें ऐसे कई स्थान हैं जो बहुत ही निकट में गोवर्धन का दर्शन होता है। बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, कुछ नीली हैं, कुछ गोरी हैं, और धीरे धीरे से आकार बढ़ते हुए दर्शन देते हुए गोवर्धन जी आगे जाते हैं और एक तिराह आता है। वो तिराहे में आप लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पर किल्लोल कुंड है, वहाँ पर राधा रानी को किल्लोलिनी कहा गया है, किल्लोलिनी। तो राधा रानी और कृष्ण वहाँ पर लीला करते हैं किल्लोलिनी कुंड पर, और वहाँ से आगे जाएंगे तो बहुत सारे कृष्ण के ऐसे मंदिर हैं जो शिलाओं का पूजन करते हैं, और उसको करते 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 हम दोबारा एक बार मानसी गंगा में पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरी परिक्रमा संपन्न हो गई है गोवर्धन की। तो मानसी गंगा में दोबारा आप स्नान कीजिए और श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा संपन्न होने के लिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, राधा रानी का धन्यवाद कीजिए। उन्होंने हमको शक्ति दी, उन्होंने हमको चेतना दी, भावना दी, और बड़ी ही अच्छी तरह से भाव रूप में, मानसिक रूप में, आत्म रूप में हमारी ये परिक्रमा उन्होंने संपन्न की है। इसलिए मानसी गंगा में आचमन करते हुए, स्नान करते हुए आप दोबारा एक बार मुखारविंद का दर्शन कीजिए, हरिदेव का दर्शन कीजिए, और प्रणाम करके अपनी परिक्रमा को आप विश्राम दीजिए।